मत्ती की इंजील बाब 22। यसु ने दीगर चंद चीज़ों को लोगों से कहने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल किया।
आसमान की बादशाही एक ऐसे बादशाह के बारिंद है जो अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त की तैयारी करे। उस बादशाह ने अपने नौकरों को उन लोगों को बुलाने के लिए भेजा जिन्हें शादी की ज़ियाफ़त के लिए दावत दिए गए थे, लेकिन वो लोग ज़ियाफ़त में शरीक होना नहीं चाहा। तब बादशाह ने मज़ीद चंद नौकरों को बुलाकर कहा, उन लोगों को तो मैंने पहले ही बुलाया था, उनसे कहो खाने की हर चीज़ तैयार है। मैंने फरबा बैल और गाय ज़बह करवाई है और सब कुछ तैयार है, और उनसे ये कहला भेजा कि शादी की दावत के लिए वो आएं। नौकर गए और लोगों को आने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने नौकरों की बात नहीं सुनी। एक तो अपने खेत में काम करने के लिए चला गया और दूसरा अपनी तिजारत के लिए चला गया, और कुछ दूसरे लोगों ने उन नौकरों को पकड़ा, मारा पीटा और हलाक कर दिया। तब बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और अपनी फौज को भेजा, उन कातिलों को ख़त्म करवाया और उनके शहर को जला दिया। फिर बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तैयार है, और मैंने जिन लोगों को ज़ियाफ़त में दावत दिया है वो दावत के इतने ज़्यादा अहल नहीं हैं। और उसने कहा कि गली के कोने कोने में जाकर तमाम नजर आने वाले तमाम लोगों को ज़ियाफ़त के लिए दावत दो। इसी तरह नौकर गली गली घूमकर नजर आने वाले तमाम लोगों को अच्छे बुरे की तख़सीस किए बगैर तमाम को जमा करके उस जगह पर बुला लाए जहां ज़ियाफ़त तैयार थी, और वो जगह लोगों से पुर हो गई। तब बादशाह तमाम लोगों को देखने के लिए अंदर आए जो खा रहे थे। बादशाह ने एक ऐसे आदमी को भी देखा जो शादी के लिए नामुनासिब लिबास पहने हुए था, और पूछा, ऐ दोस्त तू अंदर कैसे आया? तुमने तो शादी के लिए मौजू मुनासिब पोशाक नहीं पहन रखी है। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। तब बादशाह ने चंद नौकरों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर उसको अंधेरे में उस जगह पर जहां वो तकालीफ में मुब्तला होगा अपने दांतों को पीसेगा फेंक दो। हाँ, ज़ियाफ़त में तो बहुत से लोगों को दावत दी गई है, लेकिन मुंतखब करदा कुछ ही अफराद हैं।
तब फरीसी वहां से निकल गए जहां यसु तालीम दे रहे थे। वो मंसूबे बना रहे थे कि यसु को गलत कहते हुए पकड़ लें। फरीसियों ने यसु को फरेब देने के लिए कुछ लोगों को भेजा। उन्होंने अपने कुछ पैरोकारों को रवाना किया और बाज लोगों को जो हेरोदी नामी गिरोह से थे उन लोगों से कहा,
ऐ आका, हम जानते हैं कि तू फरमा बरदार शख्स है। हम जानते हैं कि खुदा की राह के बारे में तूने हक की तालीम दी है। तू खौफ ज़दा नहीं है कि दीगर लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं? सब इंसान तेरे लिए मुसावी हैं। बस तू अपना ख्याल जाहिर कर कि कैसर को महसूल देना सही है या गलत।
यसु उन लोगों की मक्कारी व अय्यारी को जान गए, इस वजह से उसने उनसे कहा कि
तुम रियाकार हो, मुझे गलती में फंसाने की तुम क्यों कोशिश करते हो? महसूल में दिया जाने वाला एक सिक्का मुझे दिखाओ।
तब लोगों ने एक चांदी का सिक्का उन्हें दिखाया। तब उसने उनसे पूछा,
सिक्के पर किसकी तस्वीर है और किसका नाम है?
फिर लोगों ने जवाब दिया,
वो तो कैसर की तस्वीर और उसका नाम है।
तब यसु ने उनसे कहा,
कैसर की चीज कैसर को दे दो और जो खुदा का है खुदा को दे दो।
यसु की कही हुई बातों को सुनने वाले वो लोग हैरतजदा होकर वहां से चले गए। उसी दिन चंद सदूकी यसु के पास आए। सदूकियों का ईमान है कि कोई भी शख्स मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। सदूकियों ने यसु से सवाल किया। उन लोगों ने कहा,
अय आका, मूसा ने कहा, अगर कोई शादीशुदा शख्स मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तब उसका भाई उस औरत से शादी करे और फिर मरे हुए भाई के लिए बच्चे करे। हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला शादी होने के बाद मर गया, उसके बच्चे नहीं थे, इसलिए उसकी बीवी की उसके भाई के साथ शादी हुई। तब दूसरा भाई भी मर गया, इसी तरह तीसरा भाई भी, इसी तरह बाकी तमाम 7 भाई भी मर गए। ان تمام کے بعد بالآخر عورت بھی مر گئی، لیکن ان سات بھائیوں نے بھی اس سے شادی کی۔ تب انہوں نے پوچھا کہ جب وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ عورت کس کی بیوی کہلائے گی؟
یسوع نے ان سے کہا،
تم نے جو غلط سمجھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہے مقدس صحیفے کیا کہتے ہیں، اور خدا کی قدرت اور طاقت کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ عورتیں اور مرد جب دوبارہ زندگی پائیں گے تو وہ دوبارہ شادی نہ کریں گے، وہ سب آسمان میں فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ مرے ہوئے لوگوں کی دوبارہ زندگی سے متعلق خدا نے کہا، کیا تم نے صحیفوں میں نہیں پڑھا، میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا بھی خدا ہوں، کیا تم نے اس بات کو نہ پڑھا ہے؟
اور کہا کہ
اگر یہی بات ہے تو خدا زندوں کا خدا ہے نہ کہ مردوں کا۔
جب لوگوں نے یہ سنا تو اس کی تعلیم پر حیران و ششدر ہو گئے۔ جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے اپنے جواب سے صدوقیوں کو خاموش کر دیا ہے تو وہ سب صدوقی ایک ساتھ جمع ہوئے۔ شریعت موسیٰ میں بہت مہارت رکھنے والا ایک فریسی یسوع کو آزمانے کے لیے پوچھا۔ فریسی نے کہا،
اے استاد، توریت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟
یسوع نے کہا،
تجھ کو اپنے خداوند خدا سے محبت کرنا چاہیے، تو اپنے دل کی گہرائی سے اور تو اپنے دل و جان سے اور تو اپنے دماغ سے اس کو پہچاننا، یہی پہلا اور اہم ترین حکم ہے۔ دوسرا حکم بھی پہلے کے حکم کی طرح ہی اہم ہے، تو دوسروں سے اس طرح محبت کر جیسا خود سے محبت کرتے ہو۔
اور جواب دیا کہ
تمام شریعتیں اور نبیوں کی تمام کتابیں انہی دو احکامات کے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔
فریسی جب ایک ساتھ جمع ہو کر آئے تو یسوع نے ان سے سوال کیا،
مسیح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے؟
فریسیوں نے جواب دیا،
مسیح داؤد کا بیٹا ہے۔
تب یسوع نے فریسیوں سے پوچھا،
اگر ایسا ہی ہے تو داؤد نے اس کو خداوند کہہ کر کیوں پکارا؟ داؤد نے مقدس روح کی قوت سے بات کی تھی، داؤد نے یہ کہا ہے، خداوند خدا نے میرے خداوند کو کہا، میرے داہنی جانب بیٹھ، میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کروں گا۔ داؤد نے مسیح کو خداوند کہہ کر پکارا ہے۔ ایسی صورت میں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے؟
یسوع کے سوال کا جواب دینا فریسیوں میں سے کسی کے لیے ممکن نہ ہو سکا، اسی لیے اس دن سے یسوع کو فریب دینے کے لیے سوال کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکا۔